संभल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
ओम शांति। आज इतनी सुंदर संध्या जहाँ प्रकृति भी स्वागत कर रही है सबका, तो ऐसे शाम के सत्र में बाप दादा की बगिया की रूहे गुलाब, मधुबन का श्रृंगार, सादगी की मूरत और सर्व की प्रिय आदरणीय सिलू दीदी जी हमारे बीच में पधारे हैं, तो हम एक हाथ की ताली से दीदी जी का अभिवादन करते हैं। आदरणीय दीदी जी के सरल सौम्य व्यक्तित्व से ब्राह्मण परिवार के सभी भाई बहन परिचित है ही, लेकिन फिर भी दीदी के विशाल व्यक्तित्व को सीमित शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने जन्म स्थान मुंबई में आपको परमात्मा प्राप्ति का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद मम्मा बाबा और दादियों की दिव्य पालना में पलते हुए लौकिक और अलौकिक पढ़ाई का सुंदर बैलेंस रखते हुए मुंबई विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद 1969 में आपने अपना समग्र जीवन 21 वर्ष की आयु में बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ में समर्पित कर दिया। कुछ वर्ष मुंबई, हैदराबाद, काठमांडू में सेवाओं के अतिरिक्त 1974 से 1976 तक मॉरिशस और कुछ अफ्रीकन देशों में अपनी सेवाओं द्वारा परमात्मा संदेश का परचम लहराने के बाद 1976 से आप स्थायी रूप से बेहद मधुबन घर में ही अपनी बेहद की सेवाएं दे रहे हो। आपकी वाणी में मधु जैसी मिठास, माँ सरस्वती की ज्ञान वीणा की झंकार है। बाप दादा ने आपको सर्व के पापों को हरने वाली, हरि का द्वार दिखाने वाली, हर की पौड़ी कहकर आपकी महिमा की है। आप वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षिका के रूप में वर्षों से मधुबन में होने वाले राज्यों शिविरों एवं भट्टियों का सुंदर रीति से संचालन भी कर रहे हैं। आप ही वह महान आत्मा है जो पहले पहले बाबा की टेलीविजन की सेवाओं के माध्यम से ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त बने और जी टीवी सोनी टीवी चैनल पर आपके वक्तव्य प्रसारित हुए। इसके अतिरिक्त आज तक भी आपकी आवाज में रिकॉर्ड की गई अति लोकप्रिय राज्योग कमेंट्री सभी सेवा केंद्र पर सुनाई जाती है, जिससे सुनकर भाई बहन गहन आत्म अनुभूति में खो जाते हैं। दीदी की कमेंट्री किसने सुनी, हाथ ऊपर करें। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से मिलने के समय बाबा के महावाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनाने की सेवा भी आप करते आए। आपका अनुशासित तपस्वी मूर्त और हर्षित मुख व्यक्तित्व एक आदर्श ब्राह्मण जीवन का मिसाल है। आपकी ऐसी अनेक विशेषताओं के लिए स्वयं बाप दादा ने आपको अनेक वरदानों से सुसज्जित किया गया है। तो ऐसी महान तपस्विनी और विद्या की देवी हम सबके बीच में आज उपस्थित है, जिनके श्री मुख से हम सुंदर प्रेरणाएं और मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। किसी पुरुषार्थी जीवन में हम ईश्वरीय प्राप्तियों के जमा के खाता को कैसे बढ़ाएं? अब हम दीदी से सुनेंगे आदरणीय सिलू दीदी जी। ओम शांति।
आपने अपना परिचय दिया है, अपना परिचय दो।
शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी अरुणा बेन, बड़ौदा अटलादरा गुजरात से हूँ और 35 वर्ष से अपना जीवन ईश्वरीय कार्य में समर्पित है और दीदी से ही शिविर किया है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है। जितनी महिमा करो उतनी कम, ये सारी महिमा उनके कर्तव्यों पर आधारित है, उनके गुणों पर आधारित है। तो आज जो विषय में लेने जा रही हूँ, जमा का खाता कैसे बढ़ाएं। शिव बाबा रत्नागर है, सौदागर है, जादूगर है ना। और बाबा कहते हैं मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, लेकिन कैसा व्यापारी हूँ, भोला व्यापारी हूँ। तुम देते क्या हो और मैं क्या देता हूँ। आगे आ जाओ। तो बाबा हम बच्चों को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम कितना उसको धारण करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। और बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे ये संगम युग ही है जिसमें तुम बहुत कमाई कर सकते हो, पुण्य की कमाई बहुत कर सकते हो और इतनी कमाई कर सकते हो जो 21 जन्म तक आप खाते रहो, इतनी कमाई कर सकते हो। और यही कमाई वास्तव में हमारे साथ चलेगी, बाकी तो सब कमाई यहीं रह जाएगी, है ना। कितना भी हम कमाते हैं, अभी शरीर छूटा, सारी वो कमाई वहीं की वहीं रही, लेकिन कौन सी कमाई साथ चलेगी जो हमने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, सुखदायी कर्म किए हैं, दुआएं कमाई है, वो सब हमारे साथ चलेगी और यही सच्ची कमाई होगी। इसीलिए कहा जाता है ना, जब मनुष्य मरता है तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता इस दुनिया का, धन दौलत वैभव संपत्ति मकान जमीन जायदाद दुकान न जाने क्या 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 नहीं संजोया होगा अपने जीवन में, वो सब यहीं का यहीं रह जाता है। लेकिन क्या ले जाता है, अपने संस्कार, जो जीवन में उसने कर्म किए हैं वो कर्म संस्कार के रूप में आत्मा के साथ जाते हैं। इसलिए यही कहा जाता है ये बहुत अच्छा कर्म लेकर गया भा तो लेकर गया तो इसका आगे का जन्म बहुत श्रेष्ठ होगा। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, ये बच्चा अपना भाग्य अपने साथ लाया। तो वो भाग्य किस आधार पर उसका बना, पूर्व जन्मों के श्रेय कर्मों के आधार पर जो संस्कार बने, और वही आत्मा अपने अगले जन्म में ले आती है। लेकिन वो बाबा कहते एक जन्म का हिसाब किताब है, एक जन्म का, और हो सकता है कई जन्मों का भी हो। लेकिन अभी जो समय है ये जमा का खाता बढ़ाने का समय है और अभी जो किया वो 21 जन्म तक चलेगा। वो तो एक जन्म किया, एक दूसरे जन्म में पाया। कुछ दान पुण्य भी करते हैं तो अगले जन्म में धनवान घर में पैदा होते, पर एक ही जन्म, फिर उस जन्म में दान पुण्य करे तो अगले जन्म में मिले। हॉस्पिटल खोलते हैं तो एक जन्म के लिए कुछ स्वास्थ्य मिलता है। कोई धर्मशाला खोलते हैं तो एक जन्म के लिए बड़ा घर उनको मिलता है। मानो कि एक जन्म का है। अगर ईश्वर अर्थ भी करते हैं तो एक जन्म, पर यहाँ बाबा कहते 21 जन्म। तो कैसे ये जमा का खाता बढ़ाएं? क्योंकि एक तरफ तो हमारे सिर पर अनेक पापों का खाता भी है। 63 जन्म हमने कितने पाप किए होंगे, वो पापों का खाता हमें चुकतू करना है और साथ साथ 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। पूरा 84 जन्मों का हिसाब है। जैसे किसके सिर पर बहुत ऋण होता है तो वो ऋण वाला व्यक्ति, इसको नींद ही नहीं आती है, कैसे मैं ये ऋण चुकता करूंगा, कैसे किराया दूंगा, कैसे ये करूंगा, कैसे, रात भर वही सोचता रहता है। तो हमारे ऊपर तो क्या केवल किराया देना ये ऋण इस जन्म का नहीं है, 63 जन्मों का है। तो कितना हमको पुण्य का खाता जमा करना होगा जो 63 जन्मों का भी चुकता करे और साथ साथ 21 जन्मों की कमाई भी करे साथ में। तो कितना करना पड़ेगा, कितना कमाना पड़ेगा, कितना कमाना पड़ेगा? हाँ, बहुत कमाना पड़ेगा। और एक जीवन में, और एक जीवन के अंदर स्थूल बातें अगर हम छोड़े तो कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमारे साथ है? वस्तुएं, वैभव, व्यक्ति, वो नहीं, पर जो सदा हमारे साथ है। पहला है हमारे संकल्प, है ना, सदा हमारे साथ है। दूसरा है हमारे श्वास, वो सदा हमारे साथ है। तीसरा है आत्मा की शक्ति, वो सदा हमारे साथ है। और चौथा है समय। ये चारों सदा हमारे साथ है, श्वास, संकल्प, समय और शक्ति। ये हमारी अपनी निजी चीज है। अब इन चारों को सफल करना माना जीवन सफल करना, यही कहेंगे ना। वैसे भी मानते हैं कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, लेकिन एक व्यक्ति वो 24 घंटे व्यर्थ गंवाता है और दूसरा व्यक्ति वो 24 घंटे इतना सफल करता है जो वो व्यक्ति सफल बन जाता है अपने जीवन में। कोई घंटे उसको ज्यादा नहीं मिले, घंटे उतने ही हैं 24 घंटे, लेकिन उन घंटों में उसने क्या क्या किया उस पर निर्भर है। उसने वो कितनी कमाई अपने साथ ले जाएगा या गंवाई ले जाएगा, कर्जा ले जाएगा, आगे भी वो कर्जा जाता है ना। तो बाबा ने हमें युक्तियां बताई है कैसे ये कमाई करो, जो 63 जन्मों का घाटा भी खत्म करो और 21 जन्मों की कमाई जमा करो। तो कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम ये कमाई करेंगे? तो बाबा ने बहुत सुंदर एक मुरली चलाई थी इस पर कि जमा का खाता कैसे बढ़ाओ। तो सबसे पहले अपने पुरुषार्थ से हम जमा का खाता बढ़ाते। हमारा पुरुषार्थ जो दिनचर्या है कि का पुरुषार्थ है, अमृत वेला वेले उठना, बाबा की श्रीमत अनुसार अमृत वेले जो नियम है उसका पूर्ण पालन करना है ना। कई कहते हैं बहन जी मैंने जब से बाबा का बना तब से मैंने एक दिन भी अमृत वेला योग मिस नहीं किया है। अब आप में से बताओ जिन्होंने एक दिन भी अमृत वेला योग मिस नहीं किया है वो हाथ उठाओ। देखो एक हाथ उठा। हाँ देखो वाह वाह और भी निकल रहे हैं और भी सोच रहे हैं ना सोच रहे हैं। तो सबसे पहला है जो बाबा ने हमें दिनचर्या दी है उस अनुसार हम कितना चल रहे हैं। तो दिनचर्या में सबसे पहले अमृत वेला, फिर मुरली जिसने कभी भी मिस नहीं की हो वो हाथ उठाओ। अच्छा एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। चलो मुरली क्लास में ना आ सके हो सकता है कोई कारण होगा लेकिन मुरली जरूर पढ़ी। और अभी तो सबको मिलती है मुरली ना, आपके मोबाइल में आ जाती है। कोई बहाना तो दे नहीं सकता कि मेरे पास हाँ मुरली नहीं है। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात बाबा कहते हैं कि भोजन चलो पकाता नहीं पड़ता हरे को लेकिन खाते समय केवल बाबा की याद में खाएं, उससे भी कमाई जमा होती है। चौथा किसी न किसी की सेवा जरूर करें, सेवा जरूर करें, फिर चाहे स्थूल में सेवा चाहे सूक्ष्म की सेवा। सेवा ये सेवा का एक बहुत बड़ा हमारा संस्कार बन जाए। हमारी दादी जानकी जी यही कहते थे जब तक मैं किसकी सेवा नहीं करती हूँ ना तब तक मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, नाश्ता नहीं करती हूँ। दादी से पूछा दादी आपने नाश्ता किया? नहीं मैंने आज किसी की सेवा नहीं की। दादी ने बताया कि बाबा ने उसको ये कहा। एक दिन वो नाश्ता कर रही थी और बाबा पहुंच गए और बाबा ने कहा आप नाश्ता कर रही हो किसी की सेवा की? तो कहा नहीं बाबा बस मुरली पूरी हुई और मैं नाश्ता करने लगी। तो बाबा ने उसको कहा कि बिना किसी की सेवा किए आप नाश्ता नहीं करना, बस ये बाबा ने उसको कहा। और उसके बाद उन्होंने इतना प्रण किया कि जब तक मैं किसी की सेवा नहीं करूं तब तक मैं नाश्ता नहीं करूंगी भोजन नहीं करूंगी जो भी। फिर बाबा कहते हैं फिर संध्या काल भी योग हो, ये 6:30 से 7:30 का समय ये योग का समय है। फिर बाबा कहते चार्ट लिखो, हाँ तो चार्ट लिखो ये भी एक दिनचर्या के अंदर बहुत बड़ा कार्य है। तो इससे हमारा जो निजी पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ के आधार पर हमारी पुण्य की कमाई जमा होती है। अर्थात जो बाबा की श्रीमत हमें मिलती है उस अनुसार हम कार्य करते हैं। बाकी तो घर गृहस्थ में तो रहना ही है, परिवार को संभालना ही है, लेकिन जो बाबा कहते हैं हर कार्य मेरी याद में करो, वो हर कार्य मेरी याद में करो तो पुण्य का खाता जमा होगा। तो पहला है अपना निजी पुरुषार्थ, फिर दूसरा क्या है? दूसरा है ज्ञान रत्नों की वो कमाई साथ साथ करना। जो बाबा कहते हैं एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। हर मुरली में बाबा ज्ञान रत्नों की कितनी महिमा गाते हैं। तो केवल एक बार मुरली नहीं पढ़ना, मुरली का मनन करना, पढ़ करके फिर मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना। तो उसमें जो समय हम देते हैं वो समय हमारी कमाई का समय हो जाता है। ऐसे नहीं नियम प्रमाण बस पढ़ लिया हो गया, नहीं। तो एक है अपना पुरुषार्थ जिसमें हम ये कमाई सदा कर सकते हैं, ज्ञान रत्नों को जमा करते हैं, अपने ऊपर अटेंशन देते हैं। तो पहली बात ये, फिर दूसरी बात जो बाबा कहते हैं कि यहाँ दुआएं कमाना, तो दुआएं कमाना, हमारे द्वारा जो भी कार्य हो उससे मुझे दुआएं मिले। हमारी दादी प्रकाशमणि जी सदा यही कहती थी कि दादी से पूछते थे, दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, बड़ी दादी से पूछते थे, दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, तो दादी कहती थी बस यही पुरुषार्थ करती हूँ कि मैं दुआएं कमाऊं, दुआएं कमाऊं। तो दुआएं कैसे कमा सकते हैं, दुआएं कैसे कमा सकते हैं जी? हाँ, दुआएं कमाना माना जैसे बताए ना, किसी की सेवा की, तो किसी की भलाई की, किसी को मदद किया, देना देना देना, ये देना, ये जो भावना है ना, इससे दुआएं मिलती है। किसी जरूरतमंद को हमने मदद किया, कितनी दुआएं उसकी मिलती है, छोटी छोटी बातों में भी दुआएं मिलती है। हम मदद कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते। कई मिसाल आते हैं, आपको एक व्यक्ति है बेचारा थोड़ा चल नहीं पाता, उसका हाथ पकड़ करके उसको रोड पार कराना, ये भी एक बहुत बड़ी कम, ये भी एक बहुत बड़ा बड़ी सेवा है, उससे भी आपको दुआएं मिलेगी। हाँ, दुआएं कि जीते रहो बेटा, जीते रहो, आपने मदद किया। तो मदद करना ये बहुत बड़ा बड़ी सेवा जो है, इसी से हमारा पुण्य का खाता जमा होता है, जिसको हम कहते हैं गुड एक्ट्स। तो वो कैसे होगा, जब दिल बड़ा होगा, बड़ा दिल। दादी जी हमेशा कहा करती थी बड़ा दिल रखो, है ना। कई सेंटरों की बहनें आती थी, हाँ दादी कैसे सेवा होगी, ये होगी, तो दादी कहती थी बड़ा दिल रखो। आप दिल से आप बड़ा दिल रख करके सेवा करो, सबको खिलाओ, पेट पेट उनका भरो, तो देखो कैसे आपका भंडारा भरपूर हो जाएगा। कई होते ना इतने कंजूस होते, इतने कंजूस, इतना करेंगे, इतना इतना, तो फिर मिलता भी उनको इतना ही है। और कई हमने सेंटरों पर देखा भरपूर है, कितनी इतना प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, भोग भी इतना प्यार से बनाते हैं, और वो भोग भी इतना प्यार से देते हैं जैसे नाश्ता हो जाता है। तो और फिर देखो फिर उनका भंडारा भी भरपूर हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसे तो नहीं खाएगा ना, वो सोचेगा ना कि मैं इतना मैं ले रहा हूँ यहाँ से, तो मैं भंडारी में भी डालूँ। तो दादी जी सदा कहती थी कि जब बजट बनाते ना, तो बजट में मकान का बजट होता है, मकान बन रहे हैं तो उसके लिए धन खर्च होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, बिजली का, ये सब खर्चा होता है, उसमें आप कटौती भले करो, खर्चा नहीं, चलो दो सब्जी की बजाय एक सब्जी खाओ, अभी इस बार कपड़े नहीं हम नहीं लेंगे, इसमें कटौती भले करो, चलो इस साल में हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हाँ थोड़ी बजट में कंट्रोल करेंगे, वो भले करो, लेकिन भोजन में कटौती नहीं करो, भोजन में कटौती नहीं करो, क्योंकि भोजन में कटौती करेंगे तो वो मिलेगा भी आपको कम, इसीलिए प्यार से खिलाओ। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, दिल तक पहुंचना हो तो क्या करो, एक होता है दिमाग से दिल तक पहुंचना, उनको इतना ज्ञान रत्नों से भरपूर करो वो समझे कि मैंने बहुत कुछ पाया, तो दिल को जीत सकेंगे। और दूसरा है पेट से दिल तक पहुंचना, पेट से दिल तक पहुंचना माना तो खूब खिलाओ, उनका पेट अच्छी तरह से भरो, तो पेट खिला पर उनको खिलाओ, तो पेट से दिल तक और दिमाग से दिल तक, तो कौन सा अच्छा है, सेठ वाला। हाँ दोनों ही अच्छा है ना, दोनों ही अच्छा है। लेकिन ज्ञान तो देखो, अब कई बार देखो शिविर में आते हैं ना लोग, तो जब उनसे अनुभव पूछते हैं तो ज्ञान क्या क्या सुना वो नहीं बताते। हाँ खाना बहुत अच्छा था, भोजन बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, प्यार मिला, खाना अच्छा मिला, ये मिला, ज्ञान इतना मिला तीन दिन, वो तो भूल ही जाता है। तो इसीलिए पेट से। और फिर कई बार बाप दादा बहुत अच्छी बात कहते थे, एक है दिमाग से तीर निकला दिमाग तक पहुंचा, और दूसरा है दिल से तीर निकला दिल तक पहुंचा। तो जो दिमाग से तीर निकला ना, कई लोग है ना बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे शब्द बोलते हैं, कईयों को समझ में भी नहीं आता है क्या बोला, लेकिन कहेगी वाह ये तो बड़ा होशियार व्यक्ति है, कितना इंटेलिजेंट, कितना ये ज्ञानी लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और लोग जो बैठे हैं वो तो साधारण बैठे हैं, अब वो उनकी बातें क्या समझे हैं इतने। तो इसीलिए जितना जो सरल होता है ना, उनकी भाषा भी सरल, उनका हर चीज सरल, तो वो दिल से निकलता है। तो जो दिमाग से तीर निकला वो दिमाग तक ही जाएगा और निकल जाएगा बाहर, और जो दिल से तीर निकला वो दिल को लगेगा। और ये बाबा जैसे बताए ना बाबा के कितने वरदान मिले, तो ये वरदान मुझे सदा बाबा देते थे, क्योंकि बाबा तो पर्सनल सबसे मिलते थे ना उस समय, तो ये वरदान बाबा से मुझे सदा मिलता था, आप दिल से सेवा करती हो। तो एक है दिमाग से सेवा करना, दूसरा है दिल से सेवा करना। तो दिमाग से सेवा की तो उसका वो रिटर्न चाहेंगे, मैंने इतना समय इनको दिया, एक घंटा ज्ञान सुनाया, इसने मेरे लिए एक भी शब्द महिमा का नहीं किया, माना इच्छा, रिटर्न की इच्छा, हमको कुछ इसका रिटर्न मिले, नाम मिले, मान मिले, शान मिले, महिमा मिले, या धन भी मिले, हाँ कुछ भी, ये भी मतलब कुछ वापस रिटर्न चाहिए, मैंने इतना किया। तो बाबा कहते हैं वो कभी नहीं सोचो, पर इसलिए क्या कहा, देना है देना है, तो इससे आपका पुण्य का खाता जमा होगा। कोई अभिमान से आप नहीं दे रहे हो, जैसे बाबा ये भी कहते हैं ना कि दान जब करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना होता है दान करते समय। एक, दान करते समय गुप्त दान होना चाहिए, दिखावे का दान नहीं होना चाहिए। हाँ किसी कोई मेरी महिमा करे इसलिए मैं दान करता हूँ, मेरा नाम हो मान हो इसीलिए मैं दान करता हूँ, दिखावा। और दूसरा बाबा कहते हैं कि एक तो दिखावा ना हो, और दूसरा वो व्यक्ति उसके लिए योग्य हो, जिससे बाबा कहते हैं अब ज्ञान तो दे दिया, एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा भी किसी को सुनाया, लेकिन वो व्यक्ति योग्य नहीं है उसके, न उसको वो उसी रूप से स्वीकार कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, घंटों घंटों प्रश्न करता जा रहा है, उसके दिमाग में कुछ नहीं बैठता। तो बाबा कहते उनके प्रति समय वेस्ट मत करो, है ना, समय वेस्ट मत करो, क्योंकि वो केवल वो समझता है वो होशियार है। तो इसके लिए इसलिए बाबा कई बार कहते हैं वो कई शास्त्रों की बातें सुनाएंगे तो आप उसमें आर्ग्यू मत करो, बस आपको ये निज ज्ञान जो भगवान ने हमें दिया है वो हम देते हैं, अब आपके ऊपर है आप उसको स्वीकार करो या ना करो, कोई जबरदस्ती तो किसी पर थोप नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं दो, ऐसे नहीं ज्यादा समय दिया तो पुण्य का खाता ज्यादा जमा हुआ, नहीं ऐसी बात नहीं है, परंतु वो आत्मा कितनी संतुष्ट हो रही है उस आधार से आपका पुण्य का खाता जमा होगा। और आप कितने संतुष्ट हुए वो सेवा करके बिना किसी रिटर्न की अपेक्षा से कि कुछ मिले, इसको बाबा कहते हैं निस्वार्थ सेवा। तो पुण्य की परिभाषा क्या बताते हैं, पुण्य अर्थात पुण्य अर्थात जो कार्य निस्वार्थ भावना से किया जाए बिना किसी अपेक्षा के, नाम मान शान की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से किया जाए और गुप्त रीति से किया जाए और उस वो योग्य हो वो व्यक्ति उसको किया जाए, वो कहेंगे ये पुण्य का कर्म। तो पुण्य कर्मों के लिए क्या चाहिए? एक तो गुप्त होना चाहिए, दिखावा नहीं। दूसरा, गुप्त पुण्य कर्म के लिए निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। और तीसरा, वो व्यक्ति उसके लिए योग्य हो, तब उसकी सेवा हो, और वो स्वीकार करे तो उसकी सेवा हो, तो आपका समय श्वास संकल्प शक्ति सफल हुए, तो वो पुण्य का खाता बनेगा। हाँ, फलाना मेरे को देख करके मेरी महिमा करेगा इसलिए मैं ये करूँ, तो वो पुण्य का खाता नहीं जमा होगा। और फिर साथ में शिव बाबा की याद में किया हुआ हो, ये देखिए ये धनवान व्यक्ति है इसलिए इस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूँ, ये गरीब है इसको छोड़ दो, नहीं। सब आत्माएं एक बराबर शिव बाबा की संतान है, सबको रिस्पेक्ट देना है। ऐसे होता है ना, अभी कई बार हमारी शिवानी बहन से हम सुनते हैं, आप कहीं जाते हैं तो अभी ऑफिस में कहीं जा रहे हैं, प्यून जो पहले सिक्योरिटी गार्ड वाला है, तो सिक्योरिटी गार्ड वाले से कैसे बात करते हैं? फिर थोड़ा अंदर गए तो वो ये जो सेक्रेटरी है उनसे कैसे बात करते हैं? फिर जो बॉस है उनसे कैसे बात करते हैं? एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? क्यों अलग होता है? तो जो आपके सिक्योरिटी वाला, जो सिक्योरिटी वाला, उसको भी रिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकते क्या? लेकिन क्या समझते हैं? ये तो ऐसा ही है। और बॉस आएगा तो नमस्ते करेंगे, ये करेंगे, और सेक्रेटरी से कैसे बात करेंगे? थोड़ा दूसरा रूप। लेकिन अगर हमारा संस्कार सबको रिस्पेक्ट देने का है तो हम अलग अलग व्यवहार नहीं करेंगे, एक जैसा ही व्यवहार होगा, एक जैसा ही व्यवहार होगा, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी हो, एक जैसा व्यवहार। अपने घर के नौकर से भी वैसा ही व्यवहार हो, यानी नौकर है तो हम उसको ऐसे कुछ अपशब्द भी बोल दे या कुछ बॉस बॉसी रूप बन जाए या ऐसे डांट के बात करें, जरूरत क्या है? जितना हम प्यार देंगे, जितना हम सम्मान देंगे, उतना वो भी देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर सम्मान चाहिए तो क्या करो? सम्मान दो, चाहे वो कोई भी हो उसको सम्मान दो, तब उसकी दुआएं मिलेगी। चलो कोई बुरा भी है तो भी हम उस बुरा है तो मैं भी बुरा बन जाऊं, हाँ ये थोड़ी, इससे थोड़ी दुआएं मिलेगी। वो बुरा है पर मैं अच्छा व्यवहार कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली वो भी बदल जाएगा। चलो न भी बदला तो इग्नोर करो, पर आप कोई पाप कर्म साथ में नहीं करो। तो पुण्य का खाता हमारा जमा करने लिए ये बातें बहुत सोचनी, कहीं उसमें पाप न बन जाए। पाप कैसे बनता है? पाप की परिभाषा क्या है? क्योंकि पाप बना तो फिर बोझ चढ़ेगा, तो पाप की परिभाषा क्या है? पाप को हम कैसे डिफाइन करते हैं जी? दिमाग से काम करते हैं। पाप की परिभाषा बाबा बहुत सिंपल बताते हैं, वैसे एक कहावत भी है, हाँ, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो पाप कहाँ से शुरू होता है? अभिमान से शुरू होता है। मैं, हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं मैं और मेरा, ये पाप के दरवाजे हैं। मैं माना अभिमान और मेरा माना लोभ, लोभ और मोह है ना, ये पाप के दरवाजे हैं। तो इसीलिए ये जब भी मैं शब्द आए तो क्या कहो? मैं आत्मा, मैं आत्मा। तो मैं आत्मा हूं तो कैसी आत्मा हूं? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ये सब गुणों के स्वरूप हूं। और मेरा कहो तो उस समय मेरा क्या? मेरा बाबा। तो बाबा क्या है? तो मैं भी वैसा ही हूँ बाबा समान। तो इसीलिए तो आपका खाता पुण्य का खाता बन जाएगा। तो कोई भी कर्म अगर देह अभिमान के वश है वो ऑटोमेटिकली विकारों के वश हो जाएगा, क्योंकि देह अभिमान आया तो काम वासना भी आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि देह को देखेंगे, मैं देह हूँ तो दूसरा भी देह है। तो इसीलिए देह अभिमान के वश है तो देह का आकर्षण होगा, और देह का आकर्षण होना ये भी काम वासना का सूक्ष्म रूप है, ये सूक्ष्म रूप है। चलो उस समय कोई गलत कर्म नहीं करेंगे, लेकिन मन से भी थोड़ा आकर्षण हुआ देह किसी की देह पर, ये भी काम वासना का सूक्ष्म स्वरूप है। फिर थोड़ा वचन से बोल दिया, कुछ हाथ लगा दिया, हाँ, तो बाबा कहते ये सब काम वासना के ही काई व्यवहार है। फिर क्रोध, तो थोड़ा सी बाबा कहते चलो गुस्सा जोर से नहीं किया, पर आवेश आ गया थोड़ा भी, यहाँ जोश आ गया, थोड़ा जोर से बोल दिया, तो वो भी तो क्रोध का ही तो अंश है। फिर लोभ, जो बाबा कई बार कहते हैं ना, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तो इच्छा नहीं है तो ये अच्छा लगता है। हाँ, उसमें हंसी की बात सुनाते हैं, कई बार होता ना, हमारी माताएं बहुत प्यार से भोजन पकाती है, हाँ, तो भोजन पकाती है तो समझो परोसती है, फिर परोस करके फिर वो खाता है व्यक्ति, तो वो बहन पूछती है ये सब्जी कैसे बनी है, ये सब्जी कैसे बनी, अच्छी लगी, हाँ बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, लेकिन क्यों पूछती है, वो तो परोस है ना बस, पर पूछती क्यों है, हाँ, इसलिए कई बार ये क्यों पूछते, क्योंकि उसने बनाया है, उसने वो सब्जी बनाई है, तो इसीलिए वो चाहती है कि मेरी महिमा गाए। अच्छा, तो कई बार हम कहते हैं आप पूछ रही हो कि अच्छी लगी सब्जी, तो ये आपने बनाई, हाँ मैंने बनाई बहन जी, मैंने बनाई, तो इसलिए मेरी महिमा हो, तो अपनी महिमा चाहने के लिए पूछते अच्छी बनी। हाँ, तो इस पर एक जोक आता है, एक जोक आता है कि एक स्त्री अपने पति को रोज खाना बनाती थी, बहुत प्यार से बनाती थी, तो एक दिन वो सोचती है मैं इतना प्यार से खाना बनाती हूँ, इतना टेस्टी बनाती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरे पति ने एक दिन भी मेरी महिमा नहीं की, मेरी महिमा नहीं की कि आज खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा लगा। तो पति को एक दिन कहा कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कितना टाइम देती हूँ, पर आपने कभी भी भोजन की महिमा नहीं की है। तो पति को भी थोड़ा लगा, मैं तो ऐसे खा के चला जाता हूँ, कुछ बोलता भी नहीं हूँ अच्छा बना है या नहीं। तो उसने अंदर में सोच लिया ठीक है कल मैं इनकी बहुत महिमा करूँगा। तो अंदर सोच के वो जैसे टेबल पर बैठा तो पत्नी ने परोसा, तो अभी खाने से पहले कह दिया अरे ये तो बड़ा टेस्टी खाना है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो वो उसकी स्त्री नाराज़ हो गई, क्यों नाराज हो गई, मैं तो तुम्हारी महिमा कर रहा हूँ, तो नाराज क्यों हो गई, कहा कि मुझे पता है क्यों महिमा कर रहे हो, क्योंकि ये पड़ोसन से खाना आया है, समझ गए क्या है ये पड़ोसन, तो पड़ोसन ने बनाया ना इसलिए महिमा कर रहे हो, और मैंने बनाया तो वो महिमा नहीं किया, उसको क्या पता पड़ोसन ने बनाया या उसने बनाया, उसको लगा कि उसने ही बनाया होगा, लेकिन पहले सोच लिया तो भी नाराज हो गई। तो पड़ोसन की महिमा क्यों सुने, उसने जो किया वो अपनी महिमा सुनना चाहती है। खैर, तो कहने का भाव है कि सबके प्रति सम्मान भाव, इसीलिए ये बहुत जरूरी है, हमारे मुख से जो शब्द भी निकले वो ऐसे प्रेम के शब्द हो, रिस्पेक्ट के शब्द हो सबके लिए। मैं अपना उदाहरण बताती हूँ, कई कहते हैं ना बहन जी आप बहुत सरल स्वभाव की हो, आप बहुत प्रेम से सबसे व्यवहार करती हो, तो ये भी देखो बाबा ने सिखाया, ममा को देखते थे, ममा कैसे छोटे बच्चों को भी कहती थी आप, कभी भी ममा के मुख से तुम शब्द नहीं निकला, तू नहीं निकला, नहीं तो बच्चों का तू इधर आ, तो ममा के मुख से कभी ऐसा शब्द नहीं निकला हाँ तू इधर आ, नहीं आप आइए, आप आइए, वो छोटे बच्चे को भी ममा उतना ही रिस्पेक्ट से बोलती थी, बुलाती थी। तो मैं मिसाल अपना देती हूँ, मैं अपना पुरुषार्थ बताती हूँ। तो ये आपको पता होगा ना, बाबा ने मुझे सरस्वती का टाइटल दिया था, मतलब सरस्वती का था वरदान में। तो उस समय मैं हैदराबाद में नागार्जुना फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन में प्रोग्राम था, उसमें हम गए थे और 3 दिन वहाँ उनके जो एग्जीक्यूटिव्स थे हैदराबाद में, उनके एग्जीक्यूटिव्स के लिए प्रोग्राम रखा था, शिविर जैसी। तो 3 दिन वहाँ मैं रही थी, तो वो बहुत प्रभावित हुए और फिर कुछ समय के बाद सारे मधुबन आए थे बाबा से मिलने के लिए, अव्यक्त बाप दादा से। तो वो हिंदी नहीं जानते थे, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ा। तो एक एक को बाबा ने वरदान दिया, करीब 8-10 एग्जीक्यूटिव्स थे, तो एक एक को वरदान दिया और मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करती रही। और लास्ट में मैं बाबा के पास गई, मैंने सोचा बाबा मुझे तो खाली टोली देंगे, तो मैं बाबा के सामने गई, दृष्टि ली और ऐसे हाथ किया, तो बाबा ने मेरे हाथ में टोली रखी और बहुत प्यार से दृष्टि दी, मुस्कुराया और उस समय ये वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है, ये बाबा ने कहा। मैं तो सुन करके बस ठीक है सुन लिया, आश्चर्यचकित हो गई, कितना बड़ा वरदान बाबा ने दिया। लेकिन वो वरदान पाने के बाद मेरा दिमाग बहुत चला, मैंने कहा बाबा ने इतना बड़ा वरदान दे दिया है तो बाबा हमसे क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं बाबा हमसे, जरूर कुछ बाबा को बड़ी सेवा करानी है मेरे से। इसीलिए बाबा ने पहले से जैसे शक्ति भर दी, अब क्या सेवा करानी है बाबा को मेरे से पता नहीं, परंतु शक्ति तो भर दी सरस्वती कहकर। फिर दूसरा विचार मेरे को ये भी आया कि अगर ये जुबान पर सरस्वती का वास है तो इस जुबान से मैं कभी भी कोई अपशब्द या बुरा शब्द या गुस्सा या मना कुछ भी ऐसी बात जो योग्य नहीं है, जो बाबा के श्रीमत के अनुसार नहीं है, मैं अपने मुख से कभी नहीं बोलूंगी, केवल ज्ञान की बातें ही सुनाऊंगी, किसी का पर चिंतन, किसकी ग्लानी, किसका ये कभी मुख से नहीं निकालूंगी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये सरस्वती जुबान पर बैठी है। बस ये मैंने प्रण किया, लेकिन साथ में ये भी था बाबा को क्या सेवा करानी है, मैं तैयार हूँ बाबा आप जो सेवा देंगे। और उसके बाद ये टीवी के लेक्चर शुरू हुए, जो टीवी का निमंत्रण मिला ना, उसके पहले कोई टीवी के प्रोग्राम हम लोगों को नहीं मिलते थे, क्योंकि दूरदर्शन ही था, प्राइवेट चैनल्स जो अभी है सोनी जी इतने सारे प्राइवेट चैनल्स है वो उस समय थे ही नहीं, केवल दूरदर्शन ही था, ये 93 की बात है। और पहली बार ये प्राइवेट चैनल जी टीवी शुरू हुआ, जो अभी चैनल्स आते हैं, और उसमें ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण मिला कि आप वैल्यूज पर, गुणों पर प्रवचन दे, आधे घंटे का स्लॉट हर संडे को। तो दादी, तो इस संस्था को निमंत्रण मिला, तो करुणाबाई दादी जी के पास वो लेटर लेके गए, तो कहा दादी को ये बहन चाहिए जो जो हमको टीवी का निमंत्रण मिल रहा है तो उसमें लेक्चर्स दे रही। अब दादी ने उसी समय मुझे बुलाया और मुझे कहा कि तुम जाओ मुंबई जाओ और ऐसे रिकॉर्डिंग करनी, पहले उसके लिए कभी रिकॉर्डिंग नहीं की थी, कभी भी नहीं की थी। और दादी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा दादी मुझे बोलना क्या होगा, अब टीवी पर बोलना मना मुझे क्या बोलना होगा। तो दादी ने कहा नहीं नहीं बहुत सहज है, जैसे आप शिविर कराती हो ना वैसे कराना, शिविर जैसे कराती हो आत्मा का ज्ञान परमात्मा का जैसे कराती हो, कोर्स भी कराते हैं ना तो ज्ञान तो देते हैं, वैसे ही कराना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब मैं वहाँ गई रिकॉर्डिंग कराने के लिए बॉम्बे गई, तो उनसे मिली जो डायरेक्टर थी वो भी लेडी थी, और खास करके आध्यात्मिक प्रवचनों के ऊपर, जिसको कहे वो जीवन मूल्य का टॉपिक था वो, तो मुझे कहा कि आपको, क्योंकि उस समय 92 में अयोध्या में वो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तो हिंदू मुस्लिम बहुत राइट्स हुए थे, बहुत झगड़े हुए थे सारे देश में क्योंकि मस्जिद तोड़ी थी। खैर, तो उसी समय बहुत अशांति फैली थी 92 में, तो हमको उसने कहा कि आपको जो अपने प्रवचन में ऐसे सुनाना है ताकि सबका आपस में प्यार प्रेम बना रहे, बस ये बताना है, और 5 बातें आपको नहीं बतानी है, नहीं बोलनी है। तो मैंने कहा अच्छा कौन सी 5 बातें नहीं बोलनी है, वो भी तो मालूम पड़े ना क्या नहीं बोलना है। तो कहा कि पहले तो अपने गुरु की महिमा नहीं करनी है, फिर हम जैसे ब्रह्मा कुमारीज है, ब्रह्मा बाबा हमारे फाउंडर है, ये है, तो अपने गुरु की महिमा नहीं करनी है। मैंने कहा ठीक है, और तो कहा अपने देश की महिमा नहीं करनी है, भारत देश, क्योंकि ये 60 देशों में सैटेलाइट के थ्रू जाएगा, 60 देशों में, तो इसीलिए भारत की महिमा नहीं करनी, दूसरे देश वाले क्यों सुनेंगे भारत की महिमा। और उस समय इतनी वो भारत का वो भी रूप नहीं था जो महिमा, वो तो देश की महिमा नहीं करनी है। तीसरा अपनी संस्था की महिमा भी नहीं करनी है कि ब्रह्मा कुमारी से हम ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं, तो ना अपने गुरु की महिमा करना है, न संस्था की महिमा करना है, न देश की महिमा करना है, और न किसी भगवान की महिमा करनी है कि शिव ही परमात्मा है, वो भी नहीं कहना, क्योंकि कई विष्णु को मानते, कोई गणेश को मानते, कोई किसको मानते, तो एक भगवान की वो भी महिमा नहीं करनी है। और 5वीं बात किसी भी संस्था को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी भी संस्था के विरुद्ध नहीं बोलना है कि फलानी संस्था तो ऐसी है, फलानी संस्था ऐसी है, या कोई शास्त्र ऐसा है, किसी के अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध भी नहीं बोलना है। तो न किसी के विरुद्ध बोलना है, न ये 4 बातें करनी है। तो मैंने कहा फिर क्या बोलना है, तो कहा बस अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, अच्छी अच्छी। उस समय ये वैल्यू एजुकेशन भी नहीं था जो हमारे अभी एजुकेशन विंग में है ना, वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, तो वो भी उस समय नहीं था। ये विंग्स के प्रोग्राम भी कोई इतने नहीं थे, क्योंकि उसमें भी वैल्यूज है, हर विंग के अंदर हर प्रोफेशन के लिए वैल्यूज बताए जाते हैं, पर उस समय ये सब बातें नहीं थी। तो मैंने बस यही सोचा बाबा अभी आपको ही सुनाना, क्या मैं सुनाऊं मुझे नहीं पता, और बस मैं बैठ गई। और आधे घंटे का हमको देना था, तो मैं सोचा भाई शांति पर बोलूंगी, शांति, क्योंकि शांति बनी रहे देश में, लड़ाई झगड़े न हो, आपस में प्यार प्रेम से रहे, बस तो शांति पर बोलना है। और बाबा ने बुलवाया, और कैसे यह इतना अच्छा लगा उनको बुलाए, तो बहुत अच्छा है, फिर आ और बताओ, तो और बताए, इतने एपिसोड्स हमने किए उस समय, फिर और बोला, पहले बोला हर हफ्ते एक करेंगे, फिर कहा कि हम रोज करेंगे, तो मैं रोज सुबह 3 बजे उठ करके एक अव्यक्त मुरली लेती थी, और वो अव्यक्त मुरली का पेज कोई भी खोलती थी, और उसमें कोई ना कोई जीव मूल्य गुण के ऊपर सारी मुरली होती थी, बस वो नोट कर लेती थी और उस पर लेक्चर देती थी। मतलब बाबा की इतनी मदद मिली, क्योंकि ये बाबा ने वरदान दिया, अब वो कैसे निकलता था पता नहीं, बस दिल से निकलता था, बाबा दी करते थे, इसलिए सफल हुआ। कौन होंगे उस समय, उस समय कौन थे जिन्होंने वो जी टीवी और सोनी टीवी पर देखा था 92, 93, 94 में, नहीं प्राइवेट चैनल्स आपने देखा, कई कहते हम उसी समय वो देख करके ज्ञान में, अभी तो शिवानी बहन आई है ना, अभी तो शिवानी के एक्टर चलते हैं, परंतु पीस ऑफ माइंड में तो हम लोगों के भी आते हैं, पर उस समय ये था, तो ये बाबा का वरदान था। तो इसीलिए हमेशा बाबा कहते हैं जो भी आप बोलो, जिससे भी बोलो, रिस्पेक्ट से बात करो, किसी से भी, क्योंकि अभिमान से करेंगे तो पुण्य का खाता थोड़ी जमा होगा। तो कोई भी विकार के वश, कोई भी कर्म हो, बोल हो, सोच भी हो, वो भी पाप का खाता बनाता है। इसीलिए कहा ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो ये हमारा लक्ष्य हो कि अगर मुझे जमा का खाता बढ़ाना है तो हमें कोई भी पाप का कार्य नहीं करना है। फिर बाबा के हम बने हैं तो ये हम ट्रस्टी हो गए, तो ट्रस्टी हो गए तो ये तन मन धन ये बाबा का है, मेरा नहीं है, तो मैं इस धन से कोई भी गलत काम नहीं कर सकता हूँ, है ना, कोई भी गलत चीज खा नहीं सकता हूँ। ये नहीं कि भाई मैं ही कमाता हूँ तो मैं जो चाहूँ सो करूँ, नहीं, अभी मेरा धन नहीं है। तो पुण्य की कमाई कैसे जमा होगी, जब हम इस तन मन और धन तीनों को सफल करेंगे। तो तन को सफल कैसे करेंगे, जो तन की शक्ति है उसका भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, मन की शक्ति का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। मन की शक्ति का दुरुपयोग कैसे होता है, व्यर्थ सोच से होता है। तो व्यर्थ सोच जैसे ही आए उस समय एकदम मन को कहो नहीं, मुझे नहीं सोचना है। जिसको बाबा ने एक बार दो शब्द कहे थे, नॉट एंड डॉट। नॉट, नॉट माना नहीं, और डॉट माना बिंदु, फुल स्टॉप, ड्रामा। तो ये दो शब्द सदा याद रखो व्यर्थ से बचने के लिए। कई कहते हैं ना व्यर्थ को कैसे जीते, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। तो व्यर्थ संकल्प आना माना आपका समय, श्वास, संकल्प, शक्ति सब व्यर्थ गया ना। अब वो व्यर्थ गया तो सफल तो हुआ नहीं, आपका पुण्य का खाता तो बना नहीं। तो इसीलिए जैसे व्यर्थ संकल्प आए एकदम नहीं, आप ब्रेक लगा दो तुरंत। अब ब्रेक लगा दिया तो आगे वो संकल्प नहीं चलेगा, लेकिन हम बह जाते हैं उसमें। ब्रेक नहीं लगाते हैं तो यहाँ का, क्योंकि क्या संकल्प आएंगे, व्यर्थ संकल्प कौन से होते आते हैं। कई बार आप सोचना, साक्षी होके देखना, व्यर्थ संकल्प कौन से आते हैं, या तो कोई व्यक्ति के आएंगे, या तो कोई वस्तु के आएंगे, या तो कोई वैभव के आएंगे, या तो कोई स्थान के आएंगे, या तो कोई परिस्थिति के आएंगे। अब वो तो बात चली गई ना, वो तो पूरी हो गई। दादी गुलजार यही कहती थी, वो बात ज्यादा अकलमंद है, वो बात जो है ना, जो हुई घटना, जो बात, वो ज्यादा अकलमंद है। वो कैसे अकलमंद है, हाँ, क्योंकि वो बात हुई और खत्म हो गई, दोबारा फिर इस प्रकार से नहीं होगी ना, इस कलप में तो नहीं होगी ना। कोई भी कोई बात होती है कलप में एक ही बार होती है, वही सीन दोबारा नहीं होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। आप फोटो भी निकालते हैं ना, भले फोटो क्लिक किया फिर दो सेकंड के बाद दोबारा किया तो क्या होगा, थोड़ा परिवर्तन तो होगा ही। इसीलिए कोई भी बात वो दोबारा नहीं होती है, उसी रूप से नहीं होती है, फिर दूसरा रूप हो जाता है। तो वो बात ज्यादा अकलमंद है, वो दोबारा नहीं आती है, लेकिन हम उसको पकड़ के रखते हैं। कैसे पकड़ के रखते हैं, सोच, सोचते ही रहते, सोचते रहे, क्या जरूरत है सोचने की, हो गया सो गया। कोई ने बहुत सेवा भी की, वो सेवा का भी वर्णन करना, ये भी तो वेस्ट ऑफ टाइम है। हमने तो दादियों से सीखा कैसे इतनी भी सेवा करके आए, वर्णन नहीं करते थे। मैं तो बताती हूँ, दादी दादी जान कीजिए अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस में गई थी, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस से दादी ने भाषण किया, जानकी दादी ने इंग्लिश में भाषण किया। दादी को लिखत दिया, थोड़ी तैयारी भी की होगी, और यूएन में दादी ने भाषण किया। तो सब ने इतनी माना 80 साल की औरत और भाषण करे इंग्लिश में वो भी, और इतनी ताकत से किया दादी ने भाषण। तो जब वापस आई ना, भारत आई और मधुबन में आई, तो मैंने बाई चांस ऐसे ही दादी से पूछ लिया, दादी जानकी से, दादी आपने यूनाइटेड नेशंस में भाषण किया, दादी आपका क्या अनुभव है। दादी कहती है मैं तो भूल भी गई। हाँ, तो मुझे नहीं पता, वो जयंती से पूछो, मैं तो भूल भी गई, क्योंकि दादी को ये सब बातें सोचने का टाइम ना है। लेकिन कोई तो मैं सबको बताएंगे, हाँ मैं यूनाइटेड नेशन में भाषण करके आई, मैं राष्ट्रपति से मिली, ये मिली वो मिली, सबको अपना फोटो दिखाएंगे ना, कई करते हैं हम। चलो दिखाना हर्जा नहीं है, लेकिन उसी में टाइम लगाना तो उसमें तो व्यर्थ जाता है ना टाइम। तो इसीलिए व्यर्थ जो अगर आता है तो पहले नॉट, वो बात तो व्यर्थ है, आई और गई। फिर दूसरा है डॉट, इसलिए बाबा ने ड्रामा का इलाज बताया, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना, मतलब वो सोचते रहेंगे। अभी तो बात तो हो गई ना, अब हो गई बात, अब क्या होगा, अब तो वापस नहीं आएगी ना, वो दृश्य वापस तो आएगा नहीं, तो इसीलिए क्या कहो बाबा, ड्रामा का राज बताते ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। तो अच्छा है, अभी भी गीत था ना पहले, जो हुआ अच्छा, अभी हो रहा अच्छा, अच्छा तो अच्छा। हाँ, क्यों क्या, दादी गुलजार बहुत प्यार से कहती थी ये क्यों क्या कहाँ कब कैसे कौन, ये क क की भाषा है। कोई क क की भाषा, क क की भाषा कौन बोलता है, हाँ? कौआ। तो क्या कौआ हो जाते हो, क्यों क्या क्यों क क क करते रहते हो, तो कौआ तो नहीं बनना है ना। तो इसमें मिसाल दे रहे ना, एक होता है कौआ, दूसरा होता है कोयल। कोयल भी काली होती है और कौआ भी काला होता है, लेकिन कोयल की आवाज तो सुनना पसंद करेंगे और कौए की आवाज कान बंद कर बस हटाओ कौए को, देखो का 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 करता रहता है। तो हमको कौए जैसा बनना है या कोयल जैसा बनना है, तो इसीलिए कभी भी काका काका की भाषा यूज नहीं करना। और ड्रामा का ज्ञान हमको बिल्कुल इन बातों से न्यारा कर। अच्छा चलो, ड्रामा, ड्रामा कहा और फुल स्टॉप। तो ड्रामा कहने से हमें पता है कि जो भी हो रहा है सब कल्याणकारी है, इसमें भी कोई कल्याण होगा। दूसरा, ड्रामा हमें क्या सिखाता है, जो भी हो रहा है कुछ भी नया नहीं है, कलह पहले भी हुआ है। तीसरा, ड्रामा हमें क्या सिखाता है कि जो भी हो रहा है सब सही है, सब सही है, हाँ, गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, तो सब सही है। तो फिर क्या क्यों कौन कहाँ कैसे ये क्यों पूछते हैं? तो नया भी नहीं है और कोई गलत भी नहीं है और हाँ सब कल्याणकारी भी है, तो सब प्रश्न खत्म। तो फिर व्यर्थ क्यों आएगा? तो व्यर्थ क्यों आता है, क्योंकि कुछ न कुछ अभिमान का अंश है। व्यर्थ क्यों आता है, क्योंकि कहीं लोभ है, कहीं मोह है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं नफरत है, कहीं हाँ ये सब है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को इन सब से न्यारा बनाता, स्मेल आती है ना, होटल है यहाँ तो बहुत वो लहसुन प्याज का बनाते, ये खिड़की भी बंद कर दो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इतना ये सब व्यर्थ खत्म करो, बस हर वक्त मेरी कमाई होती रहे, कमाई होती रहे, हर कर्म में बाबा की याद में करूं, तो ये जमा का खाता हमारा बढ़ता जाएगा। और कभी भी शरीर छूटे, हमको ये नहीं आएगा पश्चाताप कि मैंने किया नहीं, मैंने कमाई नहीं की। कभी भी शरीर छूटे, जी बाबा हम तैयार है, हैं? ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, ये कभी संकल्प ना आए। इसलिए तीन बातें बाबा ने कही है। कौन सी तीन बातें? एक तो बाबा ने कहा, जो कुछ भी होगा अचानक होगा, अचानक होगा। इसीलिए दूसरा शब्द बाबा ने क्या कहा, एवर रेडी। तो अचानक होगा तो सदा तैयार, सदा तैयार नहीं होंगी और अचानक हो गया तो फिर पश्चाताप होगा ना। और तीसरी बात बाबा ने क्या कही, बहुत काल का अभ्यास। ये तीन शब्द बाबा ने बहुत बार कहा है। तो अचानक के लिए एवर रेडी होना पड़ेगा और एवर रेडी होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और ये सदा लक्ष्य रहे कि हर वक्त मेरी पुण्य की कमाई जमा हो, कहीं पाप पाप न हो जाए जो फिर कमाई में घाटा पड़ जाए। इसीलिए बाबा कहते तुम बड़े बिजनेसमैन हो, तो बिजनेसमैन क्या करता है, सदा अपना पोता मेल देखता है। तो सब बिजनेसमैन हो ना, बिजनेसमैन हो कि नहीं, वो स्थूल बिजनेस तो करते ही होंगे। और पर ये भी बाबा कहते बिजनेस करो, जमा कितना हुआ घाटा कितना हुआ, किसी को दुख दिया, किसी को ऐसे गलत शब्द बोल दिए, किसी की, बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई कर्म न हो जो पश्चाताप करना पड़े। अगर पश्चाताप किया कि ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था, इसने भी तो टाइम गया, ऐसे भी नहीं कि अपनी ग्लानी करनी है, हम कहते चार प्रकार की वृत्तियां होती है। एक वृत्ति है जो लोग जो कई कहते हैं मैं भी बुरा तुम भी बुरे, सारा दिन मुख से बुराई निकलती है, अपनी भी ग्लानी करेंगे दूसरों के भी ग्लानी करेंगे, सारा दिन ग्लानी ग्लानी, हाँ ये भी ऐसा ये भी ऐसा वो भी ऐसा, तो ये इसके भी कितना पाप बनता है। दूसरे वो लोग हैं जो अपनी महिमा करेंगे और दूसरों की ग्लानी करेंगे, पहले वाले तो खुद की भी ग्लानी और दूसरों की भी ग्लानी, कितना पाप चढ़ता होगा उनके ऊपर, क्योंकि वो उनकी दृष्टि में बस वो गलत बात यह है, तो इसीलिए वो तो बहुत पाप बनता है। पर दूसरे जो अपनी महिमा करते दूसरों की ग्लानी करते, वो भी वास्तव में अभिमान के आधार पर है ना, मैं कितना अच्छा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो देखो बेकार आदमी है वो ऐसा है, इससे भी पाप बनता है। और तीसरे वो है जो अपनी ग्लानी करते दूसरों की महिमा करते, अपनी ग्लानी भी क्यों करनी चाहिए, मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं तो खराब हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो कोई काम का नहीं हूँ। बाबा कहते अपनी भी ग्लानी नहीं करो, भगवान हमारी इतनी महिमा करते हैं और हम अपनी ग्लानी करते हैं, अपने से भी प्यार करो। दादी जानकी बहुत कहती थी अपने से प्यार करो, मन अभिमान नहीं रखो, लेकिन बाबा हमको जिस दृष्टि से देखते हैं उसी स्वमान से खुद को भी देखो। और चौथे वो हैं जो खुद को भी उसी सम्मान से देखते और दूसरों को भी उसी सम्मान से देखते हैं और सबको सम्मान देते हैं, तभी वो पुण्य की कमाई जमा होगी, तभी दुआएं मिलेगी। तो दादी जी से जब पूछते थे दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, तो बस यही कहती थी मैं सबकी दुआएं पाऊं, यही मेरा पुरुषार्थ। अब बताओ ये मेरा, तो सबकी दुआएं कैसे मिलेगी, उसके लिए तो पुरुषार्थ चाहिए ना, अपने मुख पर कंट्रोल, अपने कर्मों पर कंट्रोल, अपनी सोच पर कंट्रोल, अपने व्यवहार पर कंट्रोल। तो तब ये कंट्रोल होगा जिसको बाबा कहते हैं चेकिंग पावर, चेक एंड चेंज। कई चेक तो करते हैं, सोचते हैं कि ये मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए, पर चेक करने के बाद बाबा कहते हैं चेंज करो, अपने आप को बदल दो, कुछ भी हो जाए मुझे ऐसा नहीं करना। जो ये मम्मा की शिक्षा थी, मम्मा की क्या शिक्षा थी, सच्चा पुरुषार्थी किसको कहेंगे, जो एक बार पुरुषार्थ करे, एक बार कोई भूल करे, उससे सबक ऐसा सीख ले जो दोबारा फिर ना करे, ये है सच्चा पुरुषार्थी। तो ऐसे पुरुषार्थी बनेंगे तब जमा का खाता हमारा बढ़ता जाएगा, और जब हम जाएंगे तो भरतू हाथ जाएंगे, है ना, कोई चिंता नहीं होगी हमारा अगला जन्म पे कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
स्वयं को आज
निकल चलते गुजरते जा रहे पल
कर ले।